बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लोअर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लोअर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
ਲਈ ਔਰ ਆਪਕਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸੁਣਨਾ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਕਾ ਬਾਇਸ ਹੋਗਾ। ਡਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਬੀਆ। ਇਨਸਾਨ ਆਖਿਰ ਡਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਡਰਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਕੋ ਡਰਾਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਵੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਮਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਹਰਾ ਅਫਾਕ ਅਲਫਾਜ਼। ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਵੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਈਬਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੇ, ਕਹੀਂ ਬਚ ਆਈਏ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کو بدل دینے والا تجربہ بن جائے گا۔ پروفیسر صاحب سوری، آپ کچھ کہہ رہے تھے، بولیے۔
میں آپ کے نام کو دیکھی
جی جی، آپ بولیے کیا آپ نے کہا پروفیسر صاحب؟
میں نے کہا آپ نے جو پروگرام کا آج عنوان ہے وہ گبر سنگھ اور بائی
جی، آج گبر سنگھ اور بائی تو گبر سنگھ اور بائبل۔ لیٹ می ٹرن دی والیوم ڈاؤن۔ خوف جو ہے، ڈر کیا ہے، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان، پرویز صاحب اگر آپ انسان کی ساری زندگی کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو میجر جو حصہ ہے، اس کی جو let me put this mic closer to me. Try not to put it here because it make noise, but I think it changes the quality. So let's do it. To insaan ki zindagi ka jo major hissa hai, main samajhta hu parmesh sab, wo khauf ke upar depend mubni hai bachpan se hi. Parmesh sab, everything is fear based. بچے کی پیدائش سے ہی، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی خوف شروع ہو جاتا ہے۔ یو ہیئر لاٹس آف تھنگس لائک دیٹ، ایسا مت کرو ایسا ہو جائے گا، یا یہ کھانا کھاؤ ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، اس طرح مت چلو، ایسے مت بیٹھو۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، دیر از اے فیئر فیکٹر، کہیں ایسا نہ ہو، انسان ٹینس ہو جاتا ہے۔ The people who are sitting outside the labor room, they are tense, they are worried. وہ پریشان ہے کہ کیا، اور جب یہ خبر آتی ہے خوشی کی کہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے، تو ایوری تھنگ کامز ڈاؤن۔ مختلف طریقوں سے یہ جو خوف ہے، اس نے ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر بات۔ اس کی وجہ یہ ہے پرویز صاحب کہ بہت سے بہن بھائی نہیں جانتے کہ اس خوف نے ہماری زندگی کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے معاشروں کا ستیاناش کیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے آج کہ کیا واقعہ ہی آپ ڈر ہے یا ڈرپوک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، ایسا کہتے ہیں نا پرویز صاحب، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ واقعہ ہی کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ بہت ڈر آدمی ہے، بہت دلیر آدمی ہے، کیا واقعہ ہی آپ دلیر ہیں یا حقیقت میں آپ بزدل ہیں؟ We'll talk to you about that. ایک بھائی کا فون ہے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر پہ کوئی غیبی چیز ہے جو ڈراتی ہے ہمیں پرویسہ۔ تو the thing is اس طرح کے بہت سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے رات کو سو نہیں سکتے کیونکہ رات کو کچھ چیز ڈراتی ہے۔ بچوں کا فکر ہے آپ کو، ڈر لگتا ہے کہ کہیں۔ ایک بار ایک بھائی سے میری بات ہوئی پرویسہ، ہم ان کے گھر گئے تو ان کا بچہ تھا، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی، وہ اس کو ہی واز کیا کہتے اس کو مینٹلی وہ بچہ جو ہے اس کی گروتھ نہیں ہوئی تھی، اور وہ بچہ کافی بڑا تھا، 18-19 سال کا تھا، لیکن وہ بالکل بچوں کی طرح کبھی میری گودی میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی میرے بال کھینچتا تھا، وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جس سے لگتا تھا کہ اس کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی۔ تو وہ بڑے وہ پریشان تھے، تو میری ان سے بات ہوئی، کہنے لگے کہ بھائی صاحب ہمیں بڑی فکر ہے، بڑا ڈر لگتا ہے کہ جب ہم مر گئے تو اس کے بعد ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ اور یہ دس از دا فیئر وی آل گرو اپ وتھ، کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ناجائز ہے یہ ایسا سوچنا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، آل آئی ایم سیئنگ کہ ہماری زندگی کا خوف نے احاطہ کیا ہوا ہے پرویز صاحب۔ اور میں یہاں پر آئی جسٹ ایڈ دیز تھنگس، اور خوف سے کیا ہوتا ہے پرویز صاحب، آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں، हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली हकीकत में खौफ क्या होता है थोड़ी देर में, प्लीज स्टे ट्यून्ड। और परवेश साहब आप अगर आप किसी चीज से मुत्तफिक ना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक भाई का मैसेज कहते हैं कि आपने परवेश साहब को सिर्फ सर हिलाने के लिए रखा होता है।
वो संसद भाई सर आपने उस वक्त हिलाता है जब अग्री होता है। बातें ऐसी होती है मैं अग्री करता रहता हूँ, जहाँ नहीं अग्री करने की होती है बातें वहां पे हम आपस में डिस्कस करते
जी,
हैं
जी, जी, जी।
यहाँ आज के इस टॉपिक में
जी।
मैं थोड़ा सा मैं भी अपनी इनपुट जिसमें देना चाहता
हूँ। जी, सर
मैंने खौफ को कैसे सीखा, मैंने खौफ को कैसे जाना
जी।
और जब खौफ को जाना तो बहुत सारी चीजें खुलती नजर आई
जी।
और इस नतीजे पे पहुंचा
जी
कि खौफ ही गुनाह था। खौफ एक गुनाह है जो
हमारे
अंदर बसा हुआ है।
क्या बात।
ये एक खौफ, ये खौफ जो है ये बीज की मानिंद है
जी।
जब बीज है, बीज के अंदर कोई आदमी अगर अकल से देखे बीज के अंदर
जी
झाड़ों का, फलों का, फूलों का समंदर है
जी।
और वो कोई गिन नहीं सकता, इतना बड़ा एक बीज के अंदर खुदा ने इतनी बड़ी राज को, इतनी बड़ी एक हकीकत को छुपाया हुआ है एक छोटे से बीज में। अब ये बीज क्या करता है, जब ये जमीन के अंदर जाता है
जी,
जमीन को प्रेग्नेट कर देता है
जी।
अब जब जमीन प्रेग्नेट होती है तो जमीन पौधे को जन्म देती है। जब पौधे को जन्म देती है तो उसमें से और फूल और फल निकलते हैं और बीज निकलते हैं और ये सिलसिला शुरू से चलता
जी।
और ये चलता इसी तरीके से खौफ जो है, खौफ इंसान के अंदर बसा हुआ है। और ये खौफ जो है ये क्या करता है, ये खौफ जो है ये शक पैदा करता है
जी।
ये शक को जन्म देता है, ये खौफ जो है खुद प्रेग्नेंट होता है और ये जन्म देता है शक को। और शक उसके बाद अपना काम करता है और शक प्रेग्नेंट होता है और जेलसी को जन्म देता है। जेलसी जो है वो अपना काम करती है, जेलसी जन्म देती है गुस्से को और जो है एक्शन को जन्म देता है। यानी जब गुस्सा आता है तो फिर एक्शन शुरू होता है, मार तोड़ शुरू होती है, कत्ल शुरू होती है, गुस्सा काम
सही।
और फिर गुस्सा जो है एक्शन को जब जन्म देता है तो फिर उसके बाद तबाही पैदा होती है।
सही।
तो अगर हम गौर
जी,
अगर हम गौर करें, एक छोटा सा आपने अल्फाज निकाला गुस्सा, किताब मुकदस में 365 बार लिखा है खौफ ना कर, खौफ ना कर, खौफ ना कर, क्योंकि खौफ ही एक गुनाह है
जी,
जो हमारे अंदर बसा हुआ है और वो निकल आता है और वो तबाहियां मचा देता है।
परवेज साहब आपने जो बात की है इट इज ये इतनी खूबसूरत बात है। और इसको होल्ड जो आपने कहा कि जो जो खौफ है वो गुनाह है, ये आप मैं अपने सुनने वाले बहनों भाइयों से कहूंगा जस्ट कीप दैट इन माइंड। परवेज साहब का ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, स्टे ट्यून्ड, होल्ड दोज वर्ड्स इन योर माइंड। जो खौफ की जो है हम आपको बताएंगे कि खौफ क्या है, खौफ कहां से शुरू हुआ, व्हाट डज इट डू टू यू। अगर आप मैंने रिसर्च कर रहा था, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन अब मैं आपसे आपको बताऊंगा, गो एंड डू सम रिसर्च। अंग्रेजी में खौफ को फियर भी कहते हैं, लेकिन किसी चीज का फियर का जो साइकोलॉजिकल नाम है उसको फोबिया कहते हैं। पर्सनली आई हैव फोबियास, पर वैसा मेरे पास मेरा मुझे हर शख्स के पास खौफ है, मेरे पास एक फोबिया है, मैं कन्फाइंड प्लेसेस में मैं नहीं रह सकता। अगर कोई बंद जगह है मैं वहां पर खड़ा नहीं रह सकता, आई हैव टू बी इन ओपन प्लेस। इसीलिए मैं एलिवेटर्स में मैं ट्रेवल नहीं कर सकता, आई कैनॉट ट्रेवल इन एलिवेटर बिकॉज जब वो एलिवेटर्स में जो जगह तंग होती है आई जस्ट गेट सफोकेटेड, ऐसा लगता है मेरे हार्ट बीट, आई गेट पैनिक अटैक जब मैं, तो ये मेरा फोबिया है, दिस इज माई फोबिया। इसको अंग्रेजी में कहते क्लॉस्ट्रोफोबिया, राइट। तो दे आर डिफरेंट फोबियास इंसान जो है वो करता है। इसलिए प्रोफेसर मैं जो अगर इफ आई गो वेकेशन आई एक दफा मुझे एक जॉब मिला, बहुत ही अच्छा जॉब परवेश साहब, और वो काफी वो कहने लगे कि आई वुड लव टू हायर यू। उनका जो दफ्तर है परवेश साहब वो 25वीं मंजिल के ऊपर था। आई हैड टू डिक्लाइन दैट ऑफर। मैंने उसे कहा सॉरी यू हैव अ गुड पे, आपकी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये मैं जॉब कर नहीं सकता क्योंकि आपका जो 25th फ्लोर पर आपका दफ्तर है और मैं 25 मैं एलिवेटर में नहीं जा सकता। आई हैव टू टेक स्टेयर्स एट 25 स्टेयर्स अप एंड डाउन, इट विल बी वंडरफुल एक्सरसाइज बट आई कैन नॉट डू इट। उन्होंने काफी कोशिश की कि दूसरे जगह पर, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक सेपरेट ऑफिस बना देते हैं जो जिसमें आप को ट्रैवल ना करना पड़े एलिवेटर में, बट टेक्निकली दे कुड नॉट डू इट सो आई हैड टू डिक्लाइन। लेकिन जो फोबिया है ये सत्यानाश कर देता है। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। तो ये डर जो है ये क्या होता है, मैं आपको बताऊं डर करता क्या है। डर जो है ये आपको सबसे पहले क्या करता है परवेश साहब, आपकी अक्ल को माउफ कर देता है साइकोलॉजिकली, जिसको आप कहते हैं हाँ। तो मैं कह रहा था कि आप जाइए गूगल पर और जितने फोबियास हैं, जितने खौफ है इंसानों को, उनकी सर्च कीजिए कि कितनी, आपको सैकड़ों के हिसाब से हो सकता है हजार फोबियास है, मुख्तलिफ किस्म के खौफ है जो इंसान को होते हैं। किसी इंसान को जरासीम का खौफ होता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता कि मुझे जरासीम आ जाएगी, मैं कमरा बंद करके रखता है वो। सो मेनी डिफरेंट फोबियास। खौफ क्या करता है आपको, मैं आपको बताऊं परवेश साहब, जब खौफ आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, आप एक जंगल में जा रहे हैं, अंधेरी रात है राइट, और क्या होता है पीछे से कोई आवाज आती है, कोई अजीब रात का अंधेरा है, कोई ऐसी आवाज आती है बड़ी खतरनाक किस्म की, आप पीछे मुड़ के देखते हैं अंधेरे में क्या होता है, आपको दो आंखें नजर आती है और कोई साया चलता हुआ आपकी तरफ आता है। अब क्या होगा साइकोलॉजिकली, आपको कुछ पता नहीं है कि उसके पीछे क्या है, है ना, वो ये जो आपको नजर आवाज सुनाई दे रही है, आपको वो आंखें नजर आ रही है और एक साया नजर आ रहा है। तो परवेश साहब व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, आप की तवज्जो जो है वो पूरी तरह उस जो टारगेट है आपका उसकी तरफ मरकूज हो जाएगी, क्योंकि आप जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है, जो माइंड है, अब वो सेल्फ प्रेजर्वेशन के मोड में आ गया है। दे हैव द बॉडी हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो सेल्फ प्रेजर्वेशन के मोड में जब आ जाता है तो यू फोकस स्ट्रेट ऑन द टारगेट, जिस चीज से आपको खतरा है पूरी आपकी जो तवानाई है उसकी तरफ फोकस हो जाती है। ये ऐसे ही है, मेरी बात गौर से सुनिए, जब आपको परवेश साहब को चोट लगती है ना तो आपको पता है कि हमारी ऐसे रेड हो जाता है, हमारे जिस्म जो है जो जगह जहां भी चोट लगती है रेड हो जाती है, माथे पे चोट लगे ऐसे रेड हो जाता है, क्योंकि जब माथे के ऊपर कहीं भी चोट लगती है तो ब्रेन जो है, गौर से मेरी बात सुनिएगा, वो सिग्नल भेजता है बॉडी को कि यहां पर गड़बड़ हो गई है, फौरी तौर पर यहां पर ब्लड की सप्लाई और जो 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 सेल्स है, जो जो व्हाइट सेल्स है, जो जर्म को जो बैक्टीरियाज को या जो जो भी आपकी बॉडी में है उसको अटैक करने के लिए, तो ब्लड की सप्लाई वहां पर बढ़ जाती है, तो आपकी जो ब्रेन है वो उस जगह के ऊपर फोकस करता है कि इस जगह के ऊपर इस वक्त परेशानी है, लेट्स फोकस ऑन दिस, इस यहां पर खतरा है। इसी तरह जब खतरा होता है यू फोकस ऑन दैट एरिया, आपकी सारी तवज्जो जो है उस तरफ मबजूल हो जाती है परवेश साहब। और उस वक्त क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिफेरल विजन। विजन आपको पता है परवेश साहब, समटाइम्स साइडों पे आपको नजर आता है, जब आप गाड़ी चला रहे होते तो कोई साइड से अगर गाड़ी है तो तब आप देखते भी नहीं है लेकिन आपको पता लग जाता है कि साइड से गाड़ी आ रही है, तो आपकी आंख जो है वो साइड पे एक एंगल तक देख सकती है, इवन तो आप सामने देख रहे हैं लेकिन साइड पे, इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन। तो क्या होता है साइकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली, जब सामने खतरा होता है आपकी जो पेरिफेरल विजन है वो कम हो जाती है, बिकॉज इधर क्योंकि नाउ आपकी तवज्जो सिर्फ उस खतरे पर मरकूज है, आप उस खतरे की हर एक हरकत को देखना चाहते हैं कि कैसे वो मूव करता है ताकि आप उसका मुकाबला करके अपने आप को बचा सके। तो आपकी जो पेरिफेरल विजन है वो भी कम हो जाती है, बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग स्ट्रेट ऑन द डेंजर, यू आर रेडी टू अटैक और यू आर रेडी टू रन और यू आर रेडी टू मेक टेक एन एक्शन अपने आप को बचाने के लिए, या तो उस पर अटैक करेंगे आप, या आप देख रहे हैं कि वो चीज कैसे मूव कर रही है और आपको कैसे उसमें से भागना है, यानी कि अपनी जान को बचाने के मोड में आप आ जाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो जो हार्ट बीट है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपके अंदर जो जो ग्लैंड्स हैं वो यू नो वो केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो आप जो ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देता है आपका ब्रेन कि किस तरफ से निकलना है, किस तरफ से भागना है, अगर उसने ऐसे किया तो ऐसे करूंगा, यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फियर, जो सामने खतरा है पूरी तरह उसके ऊपर आपने फोकस किया हुआ है। उससे क्या होता है परवेज साहब, जब मैं साइडों पे मेरी जो पेरिफेरल विजन है वो नहीं नजर आ रही तो सामने जो खतरा है उसके ऊपर मेरी तवज्जो मरकूज है। परवेज साहब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मेरी तवज्जो सारी खतरे के ऊपर मबजूल है जो सामने है, दैट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, तो क्या होगा परवेज साहब अगर साइड है, बोलिए,
फिर शक पैदा होगा
डेफिनेटली, और आप तो फिर साइड पे, और एक और बात होगी परवेज साहब, जो साइड पे जो 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 हेल्प है ना, जो हो सकता है कि साइड पे मेरा दोस्त खड़ा हो, मुझे वो नजर नहीं आएगा, मुझे सिर्फ खतरा नजर आएगा, मुझे जमीन पर पड़ी हुई बड़ी सी लकड़ी नजर नहीं आएगी जिसको मैं उठाकर उसको मार सकता हूं, कोई जानवर है उसको भगा सकता हूं, राइट, मुझे वो नजर नहीं, क्योंकि मेरी तवज्जो सिर्फ खतरे के ऊपर मबजूल है। बाजुकात परवेज साहब ऐसा होता है कि हम इतने डर जाते हैं कि हमारी तवज्जो पूरी तरह सिर्फ मसले के ऊपर, प्रॉब्लम की तरफ होती है, और हम जो हमारे पास जो 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 हथियार है हमारे पास उस खतरे का मुकाबला करने के लिए, हम उसकी तरफ देखना भूल जाते हैं। ये एक बड़ा पैरालिटिक इफेक्ट हमारे ऊपर डालती है, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड ऑन द डेंजर, आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते, जो हेल्प आपके पास मौजूद है आप उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा बहुत से लोग उस वक्त होता है व्हेन देयर इज एक्सट्रीम फियर, कोई बीमारी की खबर मिलती है कि आपको ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आपने भी बचना नहीं है, पीपल जस्ट गो इन अ वे, दे लूज ऑल होप, देयर एनर्जी गेट यू नो जस्ट गेट्स आउट ऑफ देयर बॉडी, गेट डिप्लीटेड, और दे जस्ट कोलैप्स, कि खौफ उनको घेर लेता है। तो खौफ जो है ये आपकी जिंदगी को नकारा कर देते हैं, आपको जो चीजें हैं जो 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 आपको हेल्प अवेलेबल है वो भी आपको नजर नहीं आती। अब सवाल पैदा होता है, और जैसा मैंने कहा मुख्तलिफ किस्म के खौफ है, पैरालाइज किया हुआ है जिसने आपकी जिंदगी को, हमें खुशियों से महरूम किया हुआ है परवेज साहब खौफ ने, और हमें यह भी परवेज साहब, मैं आपको अभी थोड़ी देर में मुख्तलिफ किस्म के खौफ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक हमें एक दूसरे का खौफ होता है परवेज साहब कि वो बिजनेसमैन मेरे बिजनेस से ज्यादा तरक्की ना कर जाए, राइट, और बाज़ुकात आपका जो तवज्जो है वो अपने बिजनेस से ज्यादा उसके बिजनेस पर होती है कि उसका बिजनेस कितना तरक्की कर रहा है। बाज़ुकात आपको ये होता है कि फलानी औरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना हो जाए, उस अपनी खूबसूरती से ज्यादा आप उसकी बदसूरत करने की से आपको फिक्र लग जाती है, आपको अपने आप को अमीर करने को भूल जाते हैं, दूसरे को गरीब करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक खौफ है ये कि फलाने खानदान के लोग आगे ना निकल जाए, उसका बेटा ज्यादा तरक्की कर गया, मेरा बेटे ने तरक्की क्यों नहीं की, सत्यानाश किया हुआ है इस खौफ ने आपका और मेरा।
मजहबों को भी खौफ हो जाता है,
मजहबों को भी खौफ होता है कि हम, परवेज साहब आपने ये सुना होगा कि मजहब को खतरा पड़ गया, मजहब को खतरा पड़ गया, ये मजहब को खतरा नहीं होता, मैं आपको बताऊं ये उन लोगों को खतरा होता है जो मजहब के ठेकेदार हैं, उनकी ठेकेदारी का खतरा होता है। मजहब जी परवेज साहब, कल एक भाई ने बड़ी खूबसूरत बात बताई, उन्होंने कहा कि एक बच्ची जो है ये स्पर्जन क्रिश्चियन बहुत ही मशहूर थियोलॉजियन गुजरे हैं, आई मीन इफ यू एवर वांट टू रीड द क्रिश्चियन मैसेजेस स्टार्ट विद स्पर्जन, उनकी पोती थी, उसने उनसे कहा कि मुझे चिड़ियाघर लेकर जाए, तो चिड़ियाघर लेकर गए तो वहां जो है शेर एक पिंजरे में बंद था, और उसने देखा कि शेर, वो हमेशा शेर के पिंजरे में जाकर वो खड़ी हो जाती थी और उसको अंदर जाकर नहीं बाहर, और देखती थी उसको, और लोग बाज का शेर को तंग करते थे, उसको ऐसे स्टिक के साथ पोक करते थे, तो वो उससे कहती है कि ऐसा क्यों ना करे, शेर को बचाने के लिए कुछ करे क्योंकि लोग उसको तंग करते हैं। उसने कहा कि शेर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको पिंजरे से बाहर निकाल दो, वो अपने आप को खुद बचा लेगा। शेर को किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मजहब खुदा का है तो आप ठेकेदारी से बाज आ जाए, आपकी ठेकेदारी की मजहब को जरूरत नहीं है अगर वो खुदा का है, लेकिन हो सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा का नहीं है, आप का ईमान कमजोर है, खौफ जो है
जी, इसकी आड़ में वो गब्बर सिंह बने फिरते हैं,
गब्बर से, और इसीलिए मैंने गब्बर से, और थोड़ी देर में हम सब कुछ आपको बताएंगे। और परवेज साहब डर जो है डर एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने कहा आपको एक अंधेरा अंधेरी जंगल में से गुजर रहे, आपको आंखें नजर आती, एक साया नजर आता है और आवाज सुनाई देती है, दैट्स ऑल यू हियर। आपको कुछ पता नहीं कि वो है क्या, नहीं समझ रहे मेरी बात आपको। एक आप ये कहते हैं जी कि ये हमारे बच्चे जो है ये पढ़ नहीं रहे, मुस्तकबिल इनका क्या होगा, यू हैव नॉट सीन द फ्यूचर येट, है ना, आपने मुस्तकबिल को तो नहीं देखा ना परवेज साहब। तो कहने का मकसद है कि डर जो है वो दरअसल एक ऐसी चीज का खौफ है, का नाम है, जो जो आपको परेशान कर रही है, जो भी हुई नहीं, इट डिडंट इवन हैपन, राइट। आपकी अजी मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, आपको नींद नहीं आ रही, शी स्टिल अलाइव, जस्ट वेट, यू आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर। और फ्यूचर के बारे में वरी करना ऐसा ही है परवेज साहब, आप उस कर्जे पर सूद दें जो आपने लिया ही नहीं, कैन यू बिलीव दैट, एक कर्जा आपने लिया नहीं और उसके ऊपर सूद दे रहे आप, यानी कि एक चीज हुई नहीं और आप पहले से परेशान हो रहे हैं। तो डर ने इंसानों का सत्यानाश किया हुआ है, हमारी बच्ची बीमार है क्या होगा, हमारा बच्चा बीमार है क्या होगा। और बाइबल जो है, इसलिए मैं कहता हूं आप बाइबल पढ़िए, क्योंकि बाइबल इंसानी जिंदगी के उन पहलुओं पर बात करती है जिनकी आपको जरूरत है। बाइबल नोज यू, बाइबल नोज गॉड, एंड दैट्स व्हाई ये बाइबल की कहानी क्या है, खुदा की और आपकी कहानी है। तो
बाइबल ऑन द मैनुअल
डेफिनेटली इट इज। तो परवेज साहब, डर जो है, जैसे मैंने कहा कि आपकी पेरिफेरल विजन को, डर जो है क्या करते हैं आपको, जो जो चीज आपको डरा रही है उसके ऊपर इतना फोकस करता है, पहली बात कि आपको इधर उधर जो हेल्प है आपको वो दरवाजा भी नजर नहीं आ रहा होता जिससे आप निकल सकते, क्योंकि आप खतरे के ऊपर, आपकी आप इतना जो है, एक बार एक बहन नौजवान लड़की थी, कहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी शादी, नोबडी लव्स मी, राइट। तो मैंने कहा कि वो पांच लड़के तो मैं जानता हूं तुमसे शादी करना चाहते, राइट। तो वो तुम कहती हो मुझे कोई नहीं प्यार करता, पांच छह मैं गिरा सकता हूं जो चाहते हैं कि तुम शादी करो, लेकिन तुम उनसे शायद शादी नहीं करना चाहती। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारी फोकस नेगेटिव के ऊपर, और जो खतरा जो है एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो वो जो रस्ते, वो जो रिश्ते हमें नजर आ रहे हैं है, वो हमें नजर नहीं आते। कहने का मकसद ये है कि जब खौफ के ऊपर हमारा फोकस होता है तो जो रस्ते हैं, जो मदद है, उससे हमारी आंखें हट जाती है। ये डर की एक बहुत बड़ी, ये वो है, एक अटैक है डर जैसे करता है आपको, जो डर से बचाने वाली चीजें हैं उनसे आपकी नजर हट जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डर है क्या, ये कहां से आया, इसने आपका सत्यानाश किया। एक भाई का फोन मैंने बताया शायद शुरू में, उसने कहा कि जी हमारे घर पे कोई गैबी चीज है, हमारे बच्चे डरते हैं, रात को सो नहीं सकते, और ये भी हम आपको बताएंगे, राइट, आपको एक तावीज देंगे, वेल हम दे सकते हैं तावीज अगर चाहे ना परवेज, अरे मतलब ये रो, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास तावीज है, मतलब देते नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो हम दे सकते हैं। और ऐसे ऐसे तावीज है हमारे पास परवेज साहब के आप ये गैबी चीज क्या, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसा तवीज है, राइट। तो भाई ने कहा कि बच्चे डरते हैं रात को, आवाजें आती है, वो सो नहीं सकते रात को। तो मैंने कहा क्या, तो फिर मैंने उनसे ऐसे बातें की तो पता लगा कि उनकी और आपस, बीवी के आपस में लड़ाई होती है। तो पता क्या बोलने लगे मुझे, कहते जी मैं पहले बीवी को बहुत मारता था, अब कम मारता हूं। कैन यू बिलीव दैट, एक घर है जिसमें रोज बीवी को मार पड़ती है, बच्चे डरेंगे नहीं तो क्या होंगे। सत्यानाश किया हुआ है आपके किसी खौफ ने, जिसकी वजह से आप अपनी बीवी पर हाथ। एक भाई ने कहा कि आप हमेशा यही बातें करते, क्योंकि मुझे ऐसी कॉल्स आती है बहुत सी परवेज सर
जी, वो पहले डंडे मारता होगा, अभी वो लकड़ी से मारता होगा जो अंगूठे से
जी जी एग्जैक्टली। तो अब हम देखते हैं कि परवेज साहब बाइबल जो है ये खौफ के बारे में बात करती है, क्योंकि बाइबल को पता है कि खौफ ने इंसानों का सत्यानाश किया हुआ, बच्चों का खौफ, अपनी जॉब की खौफ, अपनी सेहत का खौफ, बीमारी का खौफ, और फिर मौत का खौफ। लेट्स टॉक हाउ दिस फियर केम इनटू दिस वर्ल्ड, कि जो खौफ है वो आया कहां से। बाइबल हमें बताती है सबसे पहला लफ्ज परवेज साहब जो जब बाइबल में जब खौफ का आया है, इस जस्ट अनबिलीवेबल। आप बाइबल को अगर नहीं पढ़ते तो आप अपना नुकसान करते हैं, बाइबल का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन पढ़िए, मेरी आपसे दरखास्त है, आप अपना ही फायदा करेंगे,
है ना, फायदा करोगे दूसरों का भी फायदा करोगे,
बिल्कुल सही बात है। और लिखा है जब खुदा ने حضرت آدم کو حکم دیا کہ تو یہ پھل مت کھانا، یا یہ حکم دیا ان کو، لیکن انہوں نے وہ پھل کھا لیا، رائٹ؟ اور لکھا ہے خدا نے کہا کہ اور anyways، بلکہ خدا جا عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کو پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. They hid themselves. تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اور سے بات سنیے، epic words. خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے اسے کہا، اور دیکھیے، میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. فرسٹ ٹائم ایور بائبل میں ڈر کا لفظ اس وقت استعمال ہوا ہے جب انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا. فیئر از دا ریزلٹ آف سین. پرویز صاحب، پولیس والا آپ کو ڈراتا نہیں ہے، چور خود ڈرتا ہے. غور سے میری بات سنیے گا، چور پولیس والا آپ کو نہیں ڈراتا، چور خود ڈرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے. خدا نے آدم کو نہیں ڈرایا، آدم خود ڈرا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے چوری کر لی ہے، میں نے گناہ کر لیا. گناہ جو ہے حقیقت میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا، خدا نے آدم کو اور ہوا کو بنا کر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر رکھا. اینڈ اٹ واز بیوٹیفل، دیر واز نو فیئر، کوئی خوف نہیں تھا. خدا اور انسان کا آپس میں ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ تھا، ان کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی تھی. دے ڈڈ ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پیٹ درد نہیں تھا، کوئی یہ الرجی نہیں تھی جیسی مجھے، اتنے اچھے اچھے درخت تھے، رائٹ؟ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن آدم اور حوا نے گناہ کر لیا، اور جیسے ہی گناہ ہوا، بائبل کے مطابق خدا سے انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا گنہگار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خدا اور گناہ میں کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا. تو خدا کا انسان سے رشتہ ٹوٹ گیا. پاک اور ناپاک چیز کبھی آپس میں میل نہیں کھا سکتی. اور جب خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو جو لائف لائن تھی، جو انسان کی تمام پریشانیوں کا حل تھی، جو انسان کی تمام ضروریات جہاں سے پوری ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی. جب ضرورت، جو آپ کی ٹیک کیئر کرتا تھا، جب اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہٹ گیا، تو کیا ہوا؟ پرویز صاحب، ایک خوف نے ان کو گھیر لیا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا کالیا، تیرا کیا ہوگا کالیا، رائٹ؟ یہ بڑا خوبصورت شعر. پرویز صاحب، آئی وڈ لو ٹو شیئر دیٹ، ول ڈو دیٹ لیٹر. تو یہاں سے خوف جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ داخل ہو گیا. تو کیونکہ اب انسان جو ہے اس کو
ناپاک ہو گیا،
اس کو انسان کو کیا ہوا پرویز صاحب، اب انسان از آن ہز اون، خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. جب خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو انسان جو ہے اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خوف کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا انسان کے ساتھ رشتہ ٹوٹنا خوف کی وجہ بنتی ہے. غور سے میری بات سنیے، ڈر کیا ہے؟ ڈر حقیقت میں اپنی سیلف پریزرویشن کا ایک عمل ہے جس کا طریقہ آپ کو نہیں پتا کہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتا نہیں، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ ڈر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. جب اب خدا کے ساتھ انسان تھا اس کو اپنی ٹیک کیئر کرنے کا فکر نہیں تھا کیونکہ خدا اس کی ٹیک کیئر کر رہا تھا. جیسے ہی وہ رشتہ ٹوٹا انسان کو اپنی فکر پڑی کہ اب میرا کیا ہوگا. اینڈ وہ جو اب میرا کیا ہوگا کو جو رد عمل ہے اپنی بقا کی فکر اس کو ہم جو ہے اس کو ہم خوف کا نام دیتے ہیں. تو خدا سے دوری خوف کی وجہ بنی. آج بھی انسان خدا سے دوری کی وجہ سے خوف کا شکار ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے. اب کیا ہے اس خوف کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی. اب سوال ہے کہ اس کا علاج کیا ہے پرویز صاحب. اس کا علاج بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف طریقوں سے وہ اس خوف کا علاج کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے پرویز صاحب, اس کو یہ خوف ہے کہ دوسرے کا بزنس زیادہ کامیاب نہ ہو جائے, وہ کیا کرے گا پرویز صاحب؟ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک امیر آدمی پاکستان میں, بڑا با اثر آدمی, ایک کچھ غریب لوگ ہیں اور ان میں سے بہت سے مسیحی ہیں, جن کے گھروں کو توڑ کر وہ اپنے بزنس کو بڑا کرنا چاہ رہا تھا, رائٹ. اب ایک شخص ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے بزنس کو بڑا کرنا چاہ رہا ہے پرویز صاحب, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ جاتا ہے چھاتی چوڑی کر کے اس کے پاس جاتا ہے, اس کے اوپر روپ ڈالتا ہے, ان کو ڈراتا ہے. کیونکہ وہ ان کو ڈرا کر ان سے جگہ خالی کروانا چاہتا ہے, مثال کے طور پر. نہیں سمجھے پرویز صاحب؟ لیکن جو ان کو ڈرا رہا ہے پرویز صاحب, حقیقت میں آپ کو بتاؤں پتہ کیا ہے, اس کو اپنا ڈر ہے کہ میرا بزنس فلاپ نہ ہو جائے. اپنے ڈر کو قابو کرنے کے لیے اپنے بزنس کو, کیونکہ اس کو فکر ہے کہ میرا بزنس کم ہو رہا ہے, مجھے بڑھانا ہے اس کو تاکہ اپنے آپ کو پرزرو کر سکوں. اور اپنے ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, وہ دوسرے کو ڈرانا شروع کر دیتا. تو آج جو رشتہ خدا سے ٹوٹا, جس کی وجہ سے انسان ڈرنے لگ گیا, انسان کے دل میں ڈر آ گیا, پر وہ سب اب کیا ہوتا ہے, اب انسان اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے اب وہ دوسروں کو بھی ڈراتا ہے, اور ڈر نے پوری کائنات کا احاطہ کر لیا ہے. ایسی ایسی باتیں پر وہ سب سننے کو ملی ہے کہ تم جب بھی شادی کر کے جاؤ اپنے شوہر کو شروع میں قابو کرنا, اس کے نیچے مت لگ جانا, ڈرنا نہیں اس سے, رائٹ, اس کو ڈرانا, یہ ڈر کا حصہ. پتہ کیوں؟ یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے اوپر قابو نہ کر لے, میں پہلے اس کے اوپر قابو کر لیتی ہوں. نہیں سمجھا؟ اور جاتے ہی بتا دینا ساس کو کہ یہ جو لیڈر کون ہے اس گھر کا. نہیں سمجھا میری بات آپ کو؟ اس کو ڈر ہے کہ میری ساس میرے اوپر قبضہ نہ کر لے, تو اس کے نتیجے میں وہ ساس کو ڈرانا شروع کر دیتی ہے. ڈرے ہوئے لوگ دوسروں کو ڈراتے ہیں. ڈرے ہوئے لوگ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہمارے مذہب کو کچھ نہ ہو جائے. نہیں سمجھے میری بات آپ کو؟ ڈرے ہوئے لوگ پرویز صاحب کیا کرتے ہیں, جن کو خوف ہوتا ہے اپنی عاقبت کا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, وہ دوسروں کو ڈراتے ہیں. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی, بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائے گی. کبھی آپ نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ تم کافر ہو اور ہم مومن ہیں؟ Have you heard people? No? Are you sure? I have heard. Right? ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہو اس لیے آپ کو اپنی باتیں سنائی نہیں دیتی, لیکن جو سننے والے ان کو آپ کو جو کہتے ہیں ان کو یاد ہے. یا وہ گنہگار ہے اور ہم اچھے ہیں, رائٹ, ہم تو یہ کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا اور ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, ہمارا حلیہ اس طرح کا ہے. ایک صاحب کی میرے فیس بک پر, میں یہ بتاتا ہوں کیونکہ یہ باتیں ضروری ہے, فیس بک پر ہمارے پروگرام میں ڈسکشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ دیکھیے اپنے کرسچن ملکوں کو, وہاں پر جو ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے, وہاں پر جو ہے عورتوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں, آدمی آدمیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں شادی سے پہلے, تو آپ جو ہے اتنے برے ہیں. تو میں نے کہا سر اتنی دور, ہزاروں میل دور کی مثال آپ دے رہے ہیں, یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنے گھر میں, آپ کے اپنے گھر میں دکھا دیتا ہوں. اس میں میری بات آپ کو, یہ ساری باتیں آپ کو آپ ہی کے گھر میں دکھا دیتا ہوں. آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ उससे बड़ी बातें मैं आपको दिखा देता हूं, राइट। लेकिन ये क्या होता है कि गौर से मेरी बात सुनिए, बड़ी पते की बात है, दूसरे को गुनेगार साबित करके, क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपको अंदर से पता है कि आप नापाक है, आप गुनेगार हैं, तो क्या होता है परवेज साहब, आप दूसरे की दोनों नाक बह रही होती है ना, आपकी दोनों नाक बह रही होती है तो आप, अरे सॉरी, आपकी एक नाक बह रही होती है तो आप दूसरे की दोनों बहती हुई नाकों को देखकर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि चलो मेरी तो एक ही नाक बह रही है। नहीं समझ रहे मेरी बात आपको? When you are dirty yourself, जब आप खुद गंदे होते हैं, you have to find somebody, आप उसको ज्यादा गंदा साबित करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं। ये नफ्सियाती चीजें हैं जो बहुत से लोग नहीं समझते, क्योंकि आपके दिल में ये इत्मीनान नहीं है, आपके दिल में ये इत्मीनान नहीं है, इसलिए आप दूसरों को बताते रहे अपनी अच्छाई का, इसलिए आप दूसरों को बुरा साबित करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं। ये नफ्सियाती ये बीमारियां हैं जो इंसान को लगी हुई है। तो ये खौफ, जो शख्स जिसको खुद खौफ होता है वो दूसरे को खौफ ज्यादा करता है, जो शख्स खुद गंदा होता है वो दूसरे को गंदा कहकर अपने दिल को तसल्ली देता है, राइट। जो जिसको अपनी आकबत का खौफ होता है वो दूसरों को कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है कि वो कहां जाएगा। तो खौफ ने क्या किया है, खौफ ने, मैंने बताया खौफ कहां से शुरू हुआ, और फिर खौफ ने क्या किया कि उसने दूसरों को खौफ करने का इसको फैला दिया। खौफ क्या करता है, फैलाता है अपने आप को। और एक और बात खौफ की, कि खौफ एक ऐसी चीज का खौफ है जो हुई नहीं, जैसे मैंने कहा जो आप जो है वो अभी मुस्तकबिल में हुई नहीं और आप उससे डर रहे हैं। अब एक बड़ी खूबसूरत एक आयत है बाइबल में, और ये मसीह यस्सु के अल्फाज है। मैं आपको बताता हूं कि खौफ का जो इलाज क्या है परवेज साहब, अब देखकर हमने बताया खौफ कब शुरू हुआ और खौफ क्या करता है, सत्यानाश कर देता है इंसानों का। इंसान दिन रात परवेज साहब इबादतें करता रहता है, कर करके अपना भी सत्यानाश करवा लेता है। इसके पीछे क्या है, इस पीछे फियर है, इस खौफ, राइट। मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, तो क्या होता है, मैं आपको बताऊं एक और बात। और मसीह यस्सु के अल्फाज अगर आपने नहीं पढ़े, आई डोंट नो हाउ इवन यू लिव रियली, अब आप मुझे नहीं मालूम कि आप जिंदा कैसे रहते, बट हियर इट इज एक सीक्रेट। जो 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 है ना परवेज साहब, जो खौफ का जो इलाज है वो क्या है, खौफ का इलाज इस जुमले में है, परवेज साहब बताऊं आपको। मसीह यस्सु एक बार एक जगह गए जहां कोई बहुत बड़ा सरदार था, उसकी बेटी जो बीमार थी और वो मर गई, और वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के वहां से किसी ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यस्सु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फकत इत्तकाद रख। थिंक अबाउट दिस, एक छोटा सा जुमला है जिसमें कायनात के राज पोशीदा है। खौफ ना कर, फकत इत्तकाद रख। खौफ का जो इलाज है परवेज साहब वो क्या है, खौफ का इलाज ये नहीं कि आप दूसरे की झोपड़ी को तोड़ना शुरू कर दे। आप के खौफ का ये इलाज नहीं है, आपको अपनी नापाकी का खौफ है, उसका इलाज ये नहीं कि आप दूसरों को काफर कहना शुरू कर दें। आपको अपनी जन्नत का यकीन नहीं है, उसका इलाज ये नहीं कि आप दूसरों को कहना शुरू कर दें कि तुम जहन्नुम में जाओगे, उससे आप जन्नत में नहीं चले जाएंगे। और बहुत से परवेज साहब, एक भाई ने कल क्या खूबसूरत बात कही, कहने लगे कि जो लोग कहते हैं ना दूसरों को कि तुम जहन्नुम में जाओगे, ये उस टिकट वाले की तरह है परवेज साहब, जो सिरमे के बाहर टिकटें चेक करता है सबकी कि तुम किधर जाओगे, तुम किधर जाओगे, लेकिन खुद बाहर रहता है, खुद फिल्म देखने नहीं जाता। जो दूसरों को टिकटें बांट बांट कर कहता रहता है कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे, ये वो लोग होते हैं जो खुद दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं। उनके नसीब में फिल्म के अंदर जाकर थिएटर में एयर कंडीशनिंग एयर उसमें है ठंडी हवा में बैठकर फिल्म देखना नसीब नहीं होता उनको, और उससे क्या दूसरों को बुरा कह कहकर वो अपनी तसल्ली करवाते हैं। खौफ जो है वो खौफ को जन्म देता है। जैसे मैंने कहा आप अपने बिजनेस का खौफ है कि वो फ्लॉप ना हो जाए, आप दूसरे के बिजनेस को डाउन करना शुरू कर देते हैं। ये इंसान का सत्यानाश किया, वो उस गुनाह ने, जो बाइबल के मुताबिक पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है इससे। अब क्या हुआ कि मसीह यीशु ने आकर खौफ का इलाज बताया। मसीह यीशु ने उस शख्स से कहा, खौफ ना कर, फकत इत्तकाद रख, बी हैव फेथ। खौफ का इलाज क्या है परवेज साहब? ईमान।
ईमान।
आप कहेंगे जी ईमान तो हम भी रखते हैं, राइट? एक शख्स ने कहा जी हम ईमान वाले हैं आप। मैंने कहा हर कोई शख्स ईमान रखता है, ये आप मत कहे कि जी हम ईमानदार हैं बाकी। हर शख्स का किसी ना किसी चीज पर क्या है परवेज साहब? ईमान तो है ना हर शख्स का
जी।
नहीं समझे आप, है ना? कोई ना कोई किसी ना किसी चीज पर तो ईमान रखता है। एक शख्स जो कहता है कि ये दरख्त जो है ये खुदा है फॉर एग्जाम्पल, वो भी ईमान तो रखता ही है ना उस दरख्त के ऊपर, है ना? मतलब ईमान तो हर शख्स का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान क्या है? ईमान जो है वो खौफ का ऑपोजिट है। ईमान और खौफ में मैं आपको बताऊं, एंड ऑल दिस मेक सेंस, वी गोना पुट इट टुगेदर। परवेज साहब खौफ क्या है? जैसे मैंने कहा एक माँ है अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए परेशान है कि क्या होगा उसका। एक बाप जिसका बच्चा मेंटली वो चैलेंज था, जब मैं उसके घर गया जैसे मैंने शुरू में स्टोरी बताई, तो उसने कहा कि हमें डर है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। अब ना वो अभी तक मरे हैं परवेज साहब, ना उस बच्चे का पता लगा है कि क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन एक चीज है जो अभी तक हुई नहीं और हमें उसकी फिक्र है। डर में और ईमान में ये चीज कॉमन है कि दोनों चीजें अभी तक हुई नहीं। जब हम किसी चीज पर ईमान रखते हैं ना, बाइबल के मुताबिक ईमान की डेफिनेशन है, और ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करें उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ईमान की डेफिनेशन ये है कि ईमान जो है, मैं इसको पैराफ्रेज करके सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि ईमान ऐसे है उन चीजों को देखना जो आपने देखी नहीं, और उन चीजों जो अभी तक हुई नहीं उनका सबूत है। यानी कहने का मकसद यह है कि जब आप ईमान रखते हैं, जब आपका फेथ होता है खुदा के ऊपर, इवन दो उसने अभी तक आपको शिफा दी नहीं, लेकिन आप ऐसे अमल करते हैं जैसे शिफा मिल गई। नहीं समझ आए? ये ऐसे ही है कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है चेक के ऊपर कि इस शख्स को $1 million दे दो, है ना? और ये प्रेसिडेंट वो है जिसके पास सारी दुनिया की कायनात की दौलत है, और उसका कभी कहा कोई नहीं मोड़ता, उसने चेक साइन कर दिया है, चेक इज ऑन द वे। चेक आपको भी मिला नहीं परवेज साहब, नहीं समझे मेरी बात? लेकिन आपका अपने घर में चलना, लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, ऐसे आप अमल करेंगे जैसे कि चेक आपको मिल गया है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसने मिलना ही मिलना है। यानी ईमान क्या है? ईमान जो चीजें आपको अभी तक मिली नहीं आप ऐसे अमल करते हैं जैसे मिल गई, जो चीजें आपने देखी नहीं वो आप ऐसे अमल करते हैं जैसे देख रहे हैं। जन्नत किसी ने देखी नहीं लेकिन आप ऐसे अमल करते हैं जैसे देख रहे हैं, वो ईमान है आपका। तो मसीह यीशु ने कहा कि तुम ईमान रखो, किसके ऊपर? जी और मसीह यीशु ने जी, लेकिन यहां पर जो है उन्होंने कहा कि फकत इत्तका, किसके ऊपर? मुझ पर। मसीह यीशु ने कहा है कि मुझ पर इत्तकाद रख, फिर कहा लिखा है और फिर मगर उसने उसका हाथ पकड़ा बच्ची का और पुकार कर कहा, आए लड़की उठ, उसकी रूह फिर आई और वो खड़ी हो गई उठकर। मसीह यीशु के ऊपर जो ईमान रखते हैं परवेज साहब वो शर्मिंदा नहीं होते। ईमान जो है वो खौफ का जो वो ऑपोजिट। अब सवाल ये है कि किसके ऊपर ईमान रखा जाए परवेज साहब? खौफ को कैंसिल करने के लिए किसके ऊपर ईमान रखा जाए? बाइबल हमें बताती है, गौर से मेरी बात सुनिए, बाइबल हमें बताती है ये मसीह यीशु के अल्फाज। मसीह यीशु ने कहा ये यूहन्ना की जील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Canadian Sports and Recreation Marketing ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट, ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप।
सितंबर 14 और 15 CAA सेंट्रल ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट।
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम।
टिकट फ्री, पार्किंग फ्री। स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583।
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में, आमचू मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में, कलकत्ता भेलपूरी चटोरी गली में, जलेबी तलेगी चटोरी गली में, कपल कनर मटका चटोरी गली में।
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival. Tandoori Flame, Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb lap lapayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
कनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग लेके आ रहे हैं ताजा फर्स्ट कनेडियन इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप सितंबर 14 ते 15 नु CAA सेंटर ब्रैम्पटन विच ते नाल ही आ रहा ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट जिस विच होणगे लाइव शोज फूड राइड्स एंड मैजिक शो एंट्री एंड पार्किंग बिल्कुल फ्री वधेरे जानकारी लई 416-560-8583 416-560-8583 और विजिट fantasticfallfest.com
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੰਡਰਡ ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
आप सुन रहे हैं WTR 770 AM साज़ोबाज़ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्स